ओम शांति।
रोज जिस प्यारे बाबा को हम याद करते हैं और मन की आंखों से जिनको रोज निहारते हैं, वो स्वयं प्यारे बाप दादा आज हम बच्चों के सन्मुख पधारेंगे और हम सब उनके शालिग्राम बच्चे उनसे मिलन मनाएंगे। सभी के मन में बाबा से मिलने का बड़ा ही उमंग रहता है और जब हम ये सोचते हैं कि अनेक जन्मों से जिनको ढूंढते थे, जिससे पाने के लिए क्या नहीं करते थे, वो स्वयं साक्षात शिव बाबा आज दादी गुलजार के माध्यम से हमारे सन्मुख होंगे। वो याद कर करके भी सबका मन बड़ा हर्षित होता रहता है। बाबा कहते भी है मुरली में कि न कभी सोचा था न स्वप्न में देखा था कि हम भगवान से मिलेंगे और आज वो वास्तविकता होगी कि सचमुच बाबा आएंगे और हम सब उनसे मिलेंगे। बाबा का आना वो ही हम बच्चों पर सबसे बड़ी कृपा है। बाबा का आना ही हमारे पर कृपा करना है क्योंकि वो आकर ज्ञान की वो गहन बातें हमें बताते हैं जिससे हमारा विवेक और खुल जाता है। उनका आना ही हमें सजाग करना है। जहां कहीं भी हम अलबेले हुए हैं, आलसी हुए हैं, वहां से जगाकर बाबा हमें आगे बढ़ा देता है। हम कहां रुके हैं, कहां अटके हैं, आगे और मंजिल हमारी कहाँ है और कैसे हमें उसे पानी है, वो लेटेस्ट गाइडेंस बाबा हमें मुरली में देते हैं। अवश्य ही जितना बाबा हम बच्चों से प्यार करते हैं और ज्ञान रत्नों की जिस प्रकार से वर्षा करते हैं और हम आत्माओं में जो शक्ति भरते हैं, मैं समझती हूं कि हर बाबा के बच्चे को अंतर से वो उमंग रहता है कि ऐसे सुखदाता बाबा के लिए हमें क्या नहीं करना चाहिए। हम जानते हैं बाबा की हम बच्चों के प्रति क्या आशा है और उन आशाओं को पूरी करना यही हमारे जीवन का कर्तव्य है। हम बच्चे बने किस लिए हैं, हम उनके हुए किस लिए हैं, हम सन्मुख आते हैं उनकी बातें सुनते हैं किस लिए, अगर वो आचरण में लानी ही नहीं तो हम किस लिए सुनते हैं। इसलिए हमारा यहां आना और आकर सन्मुख बाबा के बैठना, उनके महावाक्यों को सुनना, ये सिद्ध करता है कि हम उस कर्तव्य से बंध जाते हैं कि वो जो कहते हैं वो हमें करके दिखाना है। ज्ञान को पाकर प्रारंभ में हमने जो परिवर्तन किया, जो कमजोरियां छोड़ी और जो नियम मर्यादाएं हमने अपनाई, वो हमारा पहला समर्पण था कि सत्य ज्ञान का प्रकाश मिलते ही और डायरेक्ट उस ऑलमाइटी से योग लगते ही हमने अपने कर्मों में स्वच्छता लाई, कर्म का ब्रह्मचर्य अपनाया, विकारों के मोटे स्वरूप को हमने खत्म किया, हमारे अंदर इतना संयम विकसित हुआ जो हम अपने आप को कर्म में विकारों से मुक्त रख सके। जो भी ब्राह्मण जीवन के मुख्य चार नियम है, उन नियमों का पालन करने के बाद ही हम लायक बनते हैं बाबा के सन्मुख आने के लिए। आज की साकार मुरली में भी बाबा ने कहा है कि ब्राह्मण बनकर पवित्र नहीं बना तो मरा। आज का ये महावाक्य है, ब्राह्मण माना ही पवित्र। और आज बाबा ने बीके बहनों को भी अलर्ट किया कि इस हंसों की सभा में कोई बगुले को नहीं ले आ सकती है। तो कर्म से काम वासना छोड़ना, मोटे रूप से वो गुस्सा करना, लोभ लालच में फंसना, हबच में आ जाना, देह संबंधों में मोह होना, अपने लौकिक धन साधन पोस्ट पोजीशन का अभिमान, वो हमारा ईश्वरीय जन्म होने के साथ ही हम उसे छोड़ते हैं। वो हमारा पहला समर्पण है। जब हम प्रतिज्ञा करते हैं और उस अनुसार अपने आप को चलाते हैं, हमें भी अपने आप से संतुष्टता होती है। हम खुद में चेक कर लेते हैं कि हम ये चार नियमों का पालन करते हैं या नहीं। अगर हम ब्रह्मचर्य पालन करते हैं, अन्न शुद्धि रखते हैं, व्यसन फैशन नहीं करते हैं, पिक्चर होटलों में नहीं जाते हैं, रोज क्लास करते हैं, तो हम समझते हैं कि हम ब्राह्मण हैं, اور بابا سے ملنے کے لیے ہم لائق رہے. اوشی ہی یہ ہماری پرائمری دھارنائیں ہیں جس کے آدھار پر ایشوریہ جیون شروع ہوتا ہے. اس گاڈلی یونیورسٹی میں پڑھنے کے لیے ہم لائق بنتے ہیں. جیسے ہمیں میڈیکل کالج میں جانا ہے, انجینئرنگ کالج میں ایڈمیشن لینا ہے, تو ہمیں اپنی بیسک پڑھائی میں 80-90% لانا ہوتا ہے. وہ ہمارا بیک گراؤنڈ ہے جس کے آدھار پر ہم ڈاکٹری, بیرسٹری, انجینئری پڑھنے کے لیے یوگیہ بنتے ہیں. بے شک ڈاکٹری, انجینئری, بیرسٹری پڑھنا باقی ہے, وہ آگے کا قدم ہے, لیکن وہ پڑھنے کے لیے لائقات وہ چاہیے. اس پرکار دیوتا بننے کی جو یہ پڑھائی ہے, اس کے لیے جو بیسک لائقات چاہیے, وہ ہمارے یہ چار نیم ہیں. تو چار نیموں کا پالن کرنا برامن جیون کی جو ہماری پراتھمک مریادائیں ہیں, نیم اور سیم ہیں, اس کا پالن کرنا مانا وہ لائقات ہمارے میں ہے کہ ہم دیوتا بننے کی پڑھائی پڑھ سکتے ہیں. لیکن پڑھائی تو اب ہمیں پڑھنی ہے. ہم سنتشٹ نہیں ہو جائیں کہ ہم ان نیموں میں چلتے ہیں. وہ ہمارا پراتھمک پرشارتھ. لیکن ہماری منزل بہت اونچی ہے. جب ہم کہتے ہیں کہ منشیہ سے دیوتا بننا ہے, تو دیوتا بننے کی پڑھائی ہے. دیوتا بننا مانا جو بابا ہمیں مرلی میں بتاتے ہیں کہ دیوتاؤں کی کوالیفیکیشن کیا ہے. بھکت بھی مندروں میں گاتے ہیں کہ وہ سروگن سمپن, سمپورن نرویکاری, 16 کلا سمپورن, مریادا پرشوتم اور ڈبل اہنسک. دیوتا بننا مانا یہ کوالیفیکیشن پراپت کرنا. اس لیے اب آپ جو کوالیفیکیشن ہمیں اپنے میں لانے ہیں, وہ ہم اپنی بدھی کے سامنے رکھیں اور ہمارے برامن جیون کے ورتمان ریزلٹ کو ہم بدھی میں رکھیں, تو ہم اپنے آپ میں سپشٹ پائیں گے کہ ابھی ہمیں کہاں کیا پرشارتھ کرنا ہے. پرشارتھ دو پرکار سے ہمیں کرنا ہے. ایک پرشارتھ ہے جو بابا کہتے ہیں کہ 63 جنموں کا ادھار چکانا ہے, اور دوسرا پرشارتھ ہے 21 جنموں کے لیے جمع کرنا ہے. اب 63 جنموں کا ادھار کیا ہے؟ دواپر سے لے کر کلیوگ انت تک دیہ ابھیمان کے وش جو بھی پاپ کرم ہم نے کیے, اور اس کے پھل سوروپ دکھ سے لے کر کلیوگ انت تک इन 63 जन्मों में देहभिमान के वश जो भी पाप कर्मा हमने किए हैं, वो आज हम आत्माओं के अंदर विकारी संस्कार के रूप में, अशुद्ध वृत्ति के रूप में, अवगुण, खराब आदतें, कमजोरियां और इन कमियों के रूप में वो हिसाब अभी भी हम आत्माओं के अंदर है। और इसलिए हम अपने पुरुषार्थी जीवन में अनुभव करते हैं कि वही विकारी संस्कार, अवगुण, गलत आदतें, कमजोरियां जिनसे बाध्य होकर कई बार फिर हम वो भूले करते हैं और अपना माइनस का हिसाब बनाते रहते हैं। एक तरफ इन पतित संस्कारों को हमें समाप्त करना है, जिसको बाबा कहता है कि शुद्रपना, पतितपना, पुराने संस्कार जिनको हमें खत्म करना है, और दूसरी ओर 21 जन्मों के लिए जो हमें जमा करना है वो है ज्ञान और योग के आधार पर दिव्य गुण और आध्यात्मिक शक्ति के द्वारा ऐसे श्रेष्ठ कर्म करना। इस प्रकार से बाबा का उपयोगी बनना जो हमारा प्लस का खाता बनता जाए। तो ये दो मुख्य काम हमें करने हैं, दो मुख्य पुरुषार्थ हमें करने हैं। आज भी साकार मुरली में बाबा ने हमें दो बातें करने के लिए कही, दो बातें बनने के लिए कही, टू बी एंड टू डू। दो बातें कौन सी करने के लिए कही? बाप और वर्षे को याद करो, बाप और वर्षे को याद करो, वो हमें करना है। बाबा ने कहा है कि बाप को याद करते करते, वर्षे को याद करते करते आखिर उस धाम में ही हमें पहुंच जाना, तो वो हमें करना है। और बनना क्या है? पवित्र बनो, योगी बनो, बाप को याद करो। तो मुझे पवित्र बनना है, योगी बनना है, और वो बनने के लिए करना क्या है? बाप को और वर्षे को याद करना है और कराना है। तो ये दो पुरुषार्थ हमें अभी करने हैं। तो पुरानेपन को मिटाना, अपनी रही सही कमजोरियों को स्वाहा करना, इसी का यादगार भक्ति में कहते हैं कि शिव जी पर अक के कड़वे फूल चढ़ाना। और ये भी कहा है कि शिव जी ने विषपान किया, ये दोनों गायन है। क्योंकि बाबा हम बच्चों से बार बार हमारी स्थिति बनाने के लिए हमें कहते हैं, हमारी कमजोरी को समाप्त करने के लिए कहते हैं। और इसलिए आपने देखा होगा लास्ट मुरली में भी बाबा ने कहा कि लाखों को संदेश देना वो तो हो रहा है, वो एक सेवा की प्रवृत्ति है, लेकिन हमारे से बाबा क्या रिजल्ट चाहते। जहां तक करने की बात है उस रिजल्ट से बाबा संतुष्ट हैं कि तुम लाखों को संदेश दे रहे हो। सेवा करने का रिजल्ट बाबा को अच्छा लग रहा है, लेकिन पर्टिकुलर हमसे, खुद मेरे अपने से जो बाबा रिजल्ट चाहते हैं कि वो बाप समान हम बन जाएं, वो रिजल्ट अब तक हम नहीं दे पाए हैं। ये कितने बड़े, अब इसको आश्चर्य कहें या हमें अपने आप पर कई बार शर्म आती है या अपने आप पर धिक्कार होता है कि सन्मुख बाबा कहें और हम ना कर पाए, ये कितनी बड़ी चीज है। जैसे कई कहते ना भी दो आंख की तो शर्म रखो, सन्मुख बाबा हम बच्चों को कहें और हम वो रिजल्ट नहीं दे पाते हैं तो हमें अंतर्मुखी होकर सोचने की आवश्यकता है, अपने आप को गहराई से देखने की आवश्यकता है और अपने आप में वो सिंसियरिटी लाने की आवश्यकता है ताकि जो बाबा कहते हैं उस पर हम गौर से सोचें और प्रैक्टिकली करें। अब ये हरेक का अपना अपना हिसाब होगा, क्योंकि ये हमें खुद को देखना होगा। बाहर से तो हम हंस हैं, योगी हैं, सफेद वस्त्रधारी ब्रह्मा कुमार कुमारियां हैं, लोगों की नजर में हम ज्ञानी और योगी हैं, लेकिन हम स्वयं ज्ञान के दर्पण में बाबा की तुलना में खुद का चित्र जब देखते हैं तो हमें दिखाई देता है कि हमारे अंदर अभी भी वो बगुलापन कहाँ कहाँ है, हमारे अंदर कौन सी कमजोरियां हैं। इसलिए ये और कोई नहीं जान सकता है हम अंदर से क्या है, वो हम ही जान सकते हैं। इसलिए अगर हमारी कमजोरी नहीं छूट रही है तो उसका कारण यही है कि हम स्वयं अंतर्मुखी बनकर गंभीरता से स्वयं को देखते नहीं हैं, और देखते नहीं हैं इसलिए खुद को गहरी रियलाइजेशन भी नहीं आती है कि ये कमजोरी मुझे छोड़ ही दे दी है। आज बाबा ने कहा ना कि अंतिम जन्म है, मरना तो है ही, तो क्यों नहीं वर्षा ले, क्यों नहीं पवित्र बनने की प्रतिज्ञा करें। तो ऐसी ऐसी हमें अपने आप से बात करनी होगी कि जब बनना ही है उसके लिए ही आते हैं, समय देते हैं, पैसे खर्च करते हैं और लोगों को हम दिखाते भी हैं कि हम योगी हैं, तो क्यों नहीं हम एक धक से छोड़ देते? और ये अवश्य हमें समझ लेना है कि कमजोरी कभी भी धीरे धीरे नहीं छूटेगी। कई कहते हैं ना, धीरे धीरे छोड़ देंगे। घर में आग लगी हो और आप कहेंगे क्या धीरे धीरे निकलता? कैसे छलांग मार के धक से बाहर निकल जाते? और आपने कई इंसिडेंट सुने होंगे कि बरसों से जो बीमार पड़े रहते हैं, पैरालाइज्ड है, लेकिन घर में आग लगे तो ऐसे पैरालाइज बरसों से खटिया से नहीं उठे पेशेंट भी छलांग मार के बाहर निकल गए। क्योंकि आग लगी है तो स्वयं को बचाने के लिए इंसान अपनी पूरी शक्ति लगा देता है, वो विल पावर आता है और इससे बॉडी भी एक्टिव हो जाती है। तो जब चारों ओर संसार में विकारों की आग लगी है और इतना दुख शांति हम देख रहे हैं, जो पिछली बार भी बाबा ने कहा कि क्यों और इसको दुखी करना चाहते हो क्या? इन दुखी आत्माओं की पुकार सुनाई नहीं देती है। तो जो हमें छोड़ना है वो धक से छोड़ना है, और उसके लिए मुझे स्वयं ही अपने पीछे मेहनत करनी। क्योंकि जहां तक सूक्ष्म कमजोरियों की बात है, बाबा ने कहा ना, बड़े बड़े विकार तो छोड़ दिए, मोटी मोटी रस्सियां तो काट दी है, लेकिन कमजोरियों के सूक्ष्म धागे जो हमें उड़ने नहीं दे रहे हैं, अभी भी हमें कलयुगी हिसाब से बंधे रखे हुए हैं, उन सूक्ष्म धागों को हमें ही दृढ़ता से छोड़ना होगा। इसलिए कर्म में परिवर्तन जिस स्पीड से हमने लाया, हर एक जानते हैं कि 7 दिन के कोर्स में ही, 3 दिन की शिविर में ही, 1 दिन की विजिट में ही जीवन बदल गया। आप में से ऐसे सैकड़ों भाई बहने होंगे जिसका यह अनुभव होगा कि हमने 7 दिन के कोर्स में ही सब आदतें छोड़ दी, 3 दिन के शिविर में ही जीवन बदल गए, हम एक ही बार सेंटर में आए और लक्ष्य बन गए। तो कर्म में परिवर्तन बहुत स्पीड से हमने कर दिया है, लेकिन उसका नेक्स्ट स्टेप वाचा और उसे सूक्ष्म है मनसा। तो वाणी में भी अपने आप को हमें चेक करना है कि वाचा के द्वारा कहीं भी हम किसी को चुभते हैं, कसकते हैं, दुख देते हैं, तो ये कड़वापन, ये अक के फूल अभी हमें समर्पण कर देने हैं। पिछली मुरली का महावाक्य आप सबको याद होगा, मैं समझती हूँ ये हमें हमेशा अपनी डायरी में लिख के रखना चाहिए, रोज पढ़े, कि तुम्हारे श्रेष्ठ भाग्य के आगे ये साधारण बोल अब तुम्हें शोभा नहीं देते। हम हैं कौन और हम मुख से बोलते क्या है? कई बार हम व्यर्थ बोल के ही हंसते हैं, खुशी मनाते। एक व्यर्थ बोलेगा दूसरे 10 उस पर हंसेंगे, माना उसको व्यर्थ बोलने के लिए हम और उत्साहित करते हैं। तो ज्ञान ये कहता है कि जो आत्मा जितनी गहरी आध्यात्मिक प्राप्ति करती है उतना उनका वाणी पर संयम आता है। अगर हमारा वाणी पर संयम नहीं है, इसका अर्थ यह है कि हमने आंतरिक वो ऊंची गहरी प्राप्तियां नहीं की है। इसलिए हमारी वाणी में वो दिव्यता, मधुरता, वो रूहानियत नहीं है। और उससे ऊपर का सूक्ष्म लेवल है मनसा, मानसिक रूप से तूफानों के वश होना, जिन विकारों को, जिन कमजोरियों को, जिन आदतों को हमने छोड़ दी है, उन बातों को मन से याद करते रहना। वो मानसिक हिसाब बनाते हैं, हमें मानसिक रूप से शक्तिशाली नहीं बनने देते हैं, हमारे ज्ञान और योग के पुरुषार्थ को फिर जीरो कर देते हैं। क्योंकि प्रैक्टिकल कर्म से हमने जिनका त्याग किया है, उन विकारों का मानसिक रूप से हम रस लेते रहते हैं। कर्मेंद्रियों से भोगना हमने छोड़ दिया, लेकिन मन से वो स्वाद लेते रहना, वो भी मानसिक अपवित्रता है जो हमारी रूहानियत की शक्ति को खत्म करता है। क्योंकि मनसा की स्थिति चेहरे के द्वारा तुरंत दिखाई देती है। हमने कर्म में ब्रह्मचर्य पालन किया है, लेकिन मानसिक रूप से अगर हम कोई भी देहधारी से बंधे हैं, आसक्त है, अट्रैक्ट हुए हैं, उनके आकर्षण में हैं, प्रभाव में हैं, तो वो हमारी पवित्रता की शक्ति को कमजोर कर देती है। इसलिए बाबा कहते हैं कि ब्राह्मण जन्म लेने के बाद जो काम विकार नहीं छोड़ते हैं मानसिक रूप से, वे नेचुरल आत्म अभिमानी नहीं बन सकते हैं। क्योंकि वो मानसिक आकर्षण उस देहधारी की याद को मिक्स करता रहेगा। इस प्रकार ब्राह्मण बनने के बाद अगर कोई आत्मा क्रोध नहीं छोड़ती है, क्रोध के कई स्वरूप है, घृणा करना, तिरस्कार करना, नाराज हो जाना, रूठ जाना, निग्लेक्ट करना, एक दूसरे से बोलना नहीं, असहयोग देना, कर देना, ये सब आंतरिक क्रोध के बाहरी स्वरूप है। इसलिए ब्राह्मण बनने के बाद अगर इस प्रकार का क्रोध हम करते रहते हैं, तो वो इस ईश्वरीय परिवार के प्यार को प्राप्त नहीं कर सकते। सब उनसे दूर रहेंगे, भाई ये छोटी छोटी बात में नाराज हो जाता है, ये बात बात में गुस्सा करता है, ये बात बात में रूठ जाता है, तो वो परिवार का प्यारा नहीं बन सकता है। इस प्रकार ब्राह्मण बनने के बाद अगर हम लोभ करते रहते हैं तो भाग्य बनाने से वंचित रह जाते। एक है आवश्यकता अनुसार अपने पास रखना और एक है इच्छा के वश रखना। तो हमसे छूटेगा नहीं, इसलिए हम सफल नहीं कर सकेंगे अपने धन साधन को और हम अपना भाग्य नहीं बना सकेंगे। और इस प्रकार अगर इस ब्राह्मण जीवन अपनाने के बाद हम कोई भी मोह में फंसे रहते हैं, चाहे वो मोह देह संबंध से है या इस अलौकिक ब्राह्मण परिवार में किसी से है, कोई भी देहधारी से है, तो वो मोह की सूक्ष्म जाल हमें परमात्मा का प्यारा नहीं बनने देगी। हम ईश्वर के प्यार को प्राप्त नहीं कर सकेंगे क्योंकि वो देह संबंध का प्यार मन को खींचता रहेगा, इसलिए हम उड़ नहीं सकेंगे। परमात्मा प्यार का अनुभव हम नहीं कर सकेंगे। और अगर इस जीवन के अंदर अभिमान हम करते हैं, वो दुनियावी अभिमान हमने छोड़ दिया, अपनी पोस्ट पोजीशन धन साधन का अभिमान हमने छोड़ दिया, लेकिन इस ब्राह्मण जीवन में कई बार हमें अपनी सेवा का अभिमान आता है, हम जो सहयोग देते हैं उसका अभिमान आता है, हम जो पुरुषार्थ करते हैं उस पुरुषार्थ का अभिमान कई बार आता है कि मेरे जैसा कोई पुरुषार्थी ही नहीं है, मैं ही क्लास में पहले आता हूं और कोई आता ही नहीं है। हमें अपने पुरुषार्थ का अभिमान आता है। हमें बाबा ने जो योग्य बनाया इन योग्यता का अभिमान आता है और वो किए करने के फल स्वरूप जो नाम मान शान हमें मिलता है वो बाबा को भूलकर हम स्वयं स्वीकार करने लगते हैं। इस प्रकार का अभिमान हमारे अंदर आता है तो हम इस ब्राह्मण जीवन के अंदर सफल नहीं हो पाते हैं। वो एक ऐसा बड़ा विघ्न है जो ऊपर चोटी पर पहुंचे हुए हमें फिर से नीचे गिरा देता है। इसलिए सब कुछ करने के बाद भी करने का अभिमान तो हमें और मूर्ख बना देता है, क्योंकि सब कुछ किया लेकिन एक गलत चीज हमने कर दी कि करने का अभिमान आ गया, मीन्स हमने बाबा से रीस कर ली। जो बाबा के प्रति अर्पण करना चाहिए वो मानशान मैंने स्वीकार कर लिया, माना मैंने अपने जीवन से बाबा को माइनस कर दिया। ये सबसे बड़ी भूल हमारी हो जाती है। तो मैं समझती हूँ कि इस पुरुषार्थी ब्राह्मण जीवन के अंदर भी इस प्रकार की कई कमजोरी रूपी अक के फूल हम सब के अंदर हैं, जो हमें संपन्न बनने में विघ्न रूप है, बाबा की आशाओं को पूरी करने नहीं देते हैं। और लास्ट जो बाबा ने हम सबसे कहा कि वो परिवर्तन बाबा आप में देखना चाहते हैं, जिसमें आपकी चलन और चेहरा दर्शनीय मूर्त हो, साक्षात्कार मूर्त हो, वो रूहानी स्वरूप बनाने में हमारी ये आंतरिक सूक्ष्म कमियां हमें बाधा रूप बनती है। तो हम आज जबकि बाबा स्वयं हमारे सामने आ रहे हैं, हमें मौका है कि हम स्वयं की कमजोरी पर अंतर्मुखी होकर सोचे और बाबा के अलावा और जो कुछ भी न करने योग्य, न बोलने योग्य, न सोचने योग्य, न स्वयं में रखने योग्य जो कुछ कमजोरियां हैं, उनको समर्पण करने का दृढ़ लक्ष्य अपने आप में बना ले। कई बार ये कमजोरियां हमें अल्पकाल का सुख प्यार देती है, इसलिए हम उसमें अट्रैक्ट होते रहते हैं और छोड़ना नहीं चाहते हैं। इसलिए हमें खुद को बार बार ये लक्ष्य याद दिलाना होगा कि लक्ष्य तो यही है ना कि संपूर्ण बदलना है, संपूर्ण निर्विकारी बनना है। लक्ष्य ये तो नहीं है ना कि थोड़े थोड़े विकार छोड़ने हैं, थोड़ा थोड़ा जो जो अनुकूल है वो करना है, लक्ष्य वो नहीं है। लक्ष्य ये है कि संपूर्ण निर्विकारी बनना है। और जब हमें ही बनना है तो हमें ही इन कमजोरियों को छोड़ना है। तो आज साक्षात सन्मुख में बाबा आ रहे हैं, तो हमें मौका है कि हम स्वयं की कमजोरियों के ये अक के फूल समर्पण कर दें। और इसी समर्पण पर ही बाबा कुर्बान होकर अपने आप हमें गुण शक्ति और कलाओं से भरपूर कर देते हैं। ओम शांति।